नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप अपने प्रियों के साथ सुरक्षित हैं और प्रभु के वचन की संगति में बढ़ रहे हैं। मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जिसने मुझे और आपको यह जीवन और समय दिया है। तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय से आरम्भ करें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसहाक का जन्म हुआ और हाजिरा और उसके पुत्र इश्माइल को घर से बाहर जाना पड़ा। इस्माइल से भी एक बड़ी जाति बनाने की प्रतिज्ञा, इब्राहिम और अबीमेलेक का विशेरबा में वाचा बांधना आदि विषयों को देखा है। परंतु इस अध्याय में हम एक महान और ऊंचे विषय पर आते हैं जो इस बाइबल में है। हम इस अध्याय में पवित्र शास्त्र बाइबल के और एक ऊंचे बिंदु पर आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम उच्च शिखर पर चल रहे हैं। अध्याय 22 इब्राहिम के अपने पुत्र को बलिदान चढ़ाने के विषय में बताता है। परमेश्वर ने इब्राहिम को आज्ञा दी कि वह अपने पुत्र इसहाक को उसके लिए बलिदान करके चढ़ाए, और तब परमेश्वर उसे आखिरी समय में रोकते हैं, क्योंकि उसने देखा कि इब्राहिम अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने को तैयार है। यह अध्याय हमें इब्राहिम को परमेश्वर के सातवें और आखिरी दर्शन के बारे बताता है। इसके बाद ऐसी कोई चीज बाकी नहीं रही कि परमेश्वर इब्राहिम से मांगे या कहे कि वह करे। यह एक उच्च कोटि की परीक्षा थी जिसे परमेश्वर इब्राहिम के सामने लाया। मित्रों, यदि आपको बाइबल में से 10 महान अध्यायों को नियुक्त करना हो तो आप अवश्य ही अध्याय 22 को शामिल करेंगे। उसका एक कारण यह भी है कि पहली बार यहां मानव बलिदान करने की सलाह दी गई है। यह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में था कि वह इसे स्पष्ट करे कि मानव बलिदान गलत है, और यह भी प्रकट करती है कि परमेश्वर चाहता है कि जीवन का दिया जाना जरूरी है ताकि वह पापियों को बचा सके। मनुष्यों में ऐसा कोई भी व्यक्ति योग्य नहीं है जो उस बलिदान के स्थान को ग्रहण करे या ले, केवल परमेश्वर का पुत्र यीशु ही था। यह एक रुचिदायक बात जो पौलुस कहते हैं, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। परंतु आप इसमें जोड़ सकते हैं कि उसने इब्राहिम के पुत्र को तो छोड़ दिया और उसने इसहाक को बलिदान में से होकर नहीं जाने दिया। मित्रों, यह अध्याय भजन संहिता 22 अध्याय और यशायाह के साथ तुलना करता है। मैंने पहली बार इस अध्याय में इस महान सत्यों को देखा जो मसीह के क्रूस को चित्रित करते हैं। यह विस्मयकारी था, न केवल इसहाक के जन्म में परंतु अब इसहाक के बलिदान में भी यीशु मसीह के जीवन के साथ एक अनोखी समानता है। मित्रों, एक रुचिदायक बात तो यह है कि याकूब इस विषय पर जो कहते हैं वो बाइबल के दूसरे हिस्सों से विरोधाभास लगता है, जिसे हम याकूब के पत्री 2 अध्याय उसके 21 पद में पढ़ते हैं। क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? और इस पर पौलुस भी रोमियो की पत्री 4 अध्याय में कहते हैं, रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 1-3 पद में, तो हम इब्राहिम के विषय में क्या कहें जो शरीर के अनुसार हमारा पूर्वज है? उसे क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उससे गर्व करने का कुछ कारण होता, परंतु परमेश्वर के समक्ष नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? और इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि कौन सही है, पौलुस या याकूब? मेरा उत्तर यह है कि दोनों ही सही हैं। सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि दोनों ही एक विषय पर बात कर रहे हैं और वह है विश्वास। याकूब विश्वास के कार्यों के बारे में बात कर रहा है, न कि व्यवस्था के कामों के बारे में, और पौलुस परमेश्वर के सामने धार्मिकता की बात कर रहे हैं और उत्पत्ति 15 अध्याय इसका हवाला दे रहे हैं। जब इब्राहिम ने विश्वास के साथ या विश्वास के पथ पर चलना शुरू किया, उस समय केवल परमेश्वर ही उसके हृदय को जानता था और परमेश्वर ने देखा कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हम उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, तब उसने अर्थात इब्राहिम यहोवा पर विश्वास किया और इसे यहोवा ने उसके लिए धार्मिकता गिना। परंतु हम आगे देखते हैं कि इब्राहिम कई बार असफल हुआ और मैं सोचता हूं कि उसके पड़ोसी लोग कहते होंगे कि हम इसमें कुछ भी धार्मिकता नहीं देखते हैं। परंतु वह दिन आया जब इब्राहिम ने अपने बेटे को बलिदान के लिए वेदी पर रखा, तब कठोर हृदय वाले फिलिस्तीनियों को भी इब्राहिम की इस कार्य को देखकर उसके विश्वास को स्वीकार करना पड़ा। इसलिए याकूब कहता है कि इब्राहिम कार्यों के द्वारा धार्मिक गिना गया। मित्रों, वह धार्मिक कब गिना गया? जब उसने इसहाक को वेदी पर बलिदान के लिए रखा, तब। परंतु अब प्रश्न यह भी उठता है कि क्या इब्राहिम ने सही में इसहाक को वेदी पर रखा? उत्तर तो यह है कि उसने उसे वेदी पर नहीं रखा, परंतु वह रखने की इच्छा रखता था। इसी इच्छा रखने वाली क्रिया के बारे में याकूब बात कर रहे हैं, जो इस बात को प्रकट करता है कि इब्राहिम ने विश्वास के कार्य किए। यहां पर याकूब विश्वास के कार्य पर ज्यादा जोर दे रहा है, जिसे हम उत्पत्ति 22 अध्याय में भी देखते हैं। परंतु पौलुस विश्वास के बारे में कह रहे हैं जो इब्राहिम के हृदय में था, हमें अध्याय में देखने को मिलता है। मित्रों, उत्पत्ति 22 अध्याय में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसहाक को बलि करने के लिए परमेश्वर इब्राहिम को आज्ञा देते हैं। तो आइए हम उत्तर इसका आरंभ करें। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और उससे कहा, इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। मित्रों, यहां पर परीक्षा शब्द जरा ज्यादा कठोर है या ज्यादा मजबूत शब्द है, जिसका वास्तविक अर्थ है परखना। याकूब अपनी पत्री में बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं कि परमेश्वर कभी भी किसी को बुराई के साथ नहीं परखते हैं। परमेश्वर सिर्फ लोगों के विश्वास को जांचने के लिए उन्हें परखते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को परखा और उसे वह कार्य करने के लिए कहा जो बिल्कुल विचित्र या न कभी सुना गया था। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 22 अध्याय के 2 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, और उसने कहा, अपने पुत्र, हाँ, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, साथ लेकर मोरिया देश को जा। वहां एक पहाड़ पर, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, उसे होम बलि करके चढ़ाना। मित्रों, इस अध्याय के तुरंत बाद हमें बताया गया है कि सारा की आयु 127 वर्ष की हुई और वह मर गई। इसे हम अध्याय 23 उसके 1 पद में पढ़ेंगे। जब हम उस अध्याय को इस अध्याय के साथ तुलना करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसहाक अब एक छोटा लड़का नहीं है, क्योंकि जब सारा 90 वर्ष की थी, उस समय इसहाक का जन्म हुआ, और जब सारा की आयु 127 वर्ष की हो गई थी, इसका मतलब यह हुआ कि इसहाक 37 अर्थात 37 वर्ष का हो गया। यद्यपि इस अध्याय में उसे लड़का या बेटा या पुत्र कहकर संबोधन किया गया है, इसलिए आपको यह पता नहीं चलेगा कि वह 30वें वर्ष में है, संभवतः 30 या 33 वर्ष की आयु में था। इस उम्र के बेटे के लिए परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, अपने पुत्र को ले। यहां पर ध्यान दीजिए कि यह इब्राहिम और परमेश्वर के हृदय में किस प्रकार अपना कार्य करता है। अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, अपने पुत्र को ले। प्रभु यीशु मसीह ने त्रिएक परमेश्वर में पुत्र का स्थान ग्रहण किया, और आगे देखते हैं कि अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भी इकलौता पुत्र कहा गया है। अपने इकलौते पुत्र इसहाक, जिससे तू प्रेम करता है, प्रभु यीशु ने कहा, पिता मुझसे प्रेम करता है। इसके आगे परमेश्वर कहते हैं, उसे साथ लेकर मोरिया देश को जा। बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास है कि मोरिया वही जगह है जहां पर कई सदियों या शताब्दियों के बाद मंदिर बनाया गया और जिस स्थान पर यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो शहर की दीवार के बाहर था। जब आप यरूशलेम जाएंगे तो पाएंगे कि मंदिर और गोलगथा पहाड़ ज्यादा दूर नहीं है, वे एक ही पर्वत श्रेणी पर थे, उनके बीच मार काट कर बनाया गया था, परंतु यह उसी पर्वत पर था जिसे मोरिया कहा जाता था। हम सब ऐसा नहीं कहें तो अच्छा होगा कि यीशु मसीह उसी स्थान पर मरे थे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, परंतु यह तो निश्चित है कि वह उसी पर्वत पर मरे थे, वही पहाड़ जिस पर इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए लाया था। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, वहां एक पहाड़ पर जिसे मैं तुझे बताऊंगा उसे होम बलि करके चढ़ाना। मित्रों, मूसा की व्यवस्था तक होम बलि का प्रचलन था, इसके बाद पाप बलि और मेल बलि चढ़ाए जाते थे। यहाँ होम बलि यीशु मसीह के बारे में बताता है कि वह कौन है या कौन था। यहाँ पर यह एक मानव बलिदान है, और मैं सच कहूं तो यह एक नैतिक प्रश्न खड़ा करता है कि क्या मानव बलिदान करना गलत है। जी हाँ, नैतिक रूप से यह गलत है। मित्रों, यदि आप इब्राहिम से उस दिन मिले होते जब वह अपने बेटे के साथ मार्ग पर था, तो शायद आपने उससे पूछा होता कि इब्राहिम आप कहाँ जा रहे हैं, तो वह आपको उत्तर देता कि मैं अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। तब आप शायद कहते, क्या आप नहीं जानते हैं कि ऐसा करना गलत है? जी हाँ, मुझे सिखाया गया है कि यह गलत है। मैं जानता हूं कि यहाँ के पड़ोसी देश मानव बलि चढ़ाते हैं, फिलिस्ती लोग मोलेक देवता को बलि चढ़ाते हैं, परंतु मुझे दूसरी रीति से सिखाया गया है। तो आप उसे आगे प्रश्न करते हैं कि तब आप ये सब क्यों कर रहे हैं, और वह इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, मैं इसे नहीं समझता हूं, लेकिन मैं उसके साथ पिछले 50 वर्षों से भी अधिक साथ साथ चल रहा हूं। उसने मुझे कभी भी असफल नहीं होने दिया, और न ही उसने मुझे ऐसा कार्य करने को कहा है जो मेरे लिए सबसे उत्तम ना हो। मैं यह सब कुछ नहीं समझता हूं, लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि यदि मैं उसके साथ चलता रहा तो वह इसहाक को मृतकों में से भी जिंदा कर देगा। मैं यह विश्वास करता हूं कि वह ऐसा ही करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, और यह एक बड़ी ही अद्भुत तस्वीर है कि इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को साथ लेकर जाता है। उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, अतः इब्राहिम बड़े सवेरे उठा और अपने गधे पर काठी कसकर उसने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को साथ लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीरी और उठकर उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जिसके विषय में परमेश्वर ने उससे कहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने साथ इसहाक को ले जा रहा है और साथ में होम बलि के लिए लकड़ी भी ली। अब आगे हम उत्पत्ति 22 उसके 4 पद में पढ़ते हैं, तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी दृष्टि उठाई तो उस स्थान को दूर से देखा। मित्रों, हम देखते हैं कि उस स्थान में पहुंचने के लिए इब्राहिम को 3 दिन लगे, परंतु इस बात को याद रखिए कि यह तीसरा ही दिन था जिसमें उसने अपने पुत्र इसहाक को जीवित वापस पाया, अर्थात मृत्यु से जीवन जैसे वह पहले था। मित्रों, इब्राहिम का देखने का तरीका यही था कि उसका पुत्र इसहाक उसके लिए तीसरे दिन जीवित किया जाएगा। यह किस प्रकार की तस्वीर हमारे सामने है। उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 5 पद को हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गधे के पास यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मित्रों, यहाँ पर पिता और पुत्र के बीच में एक कार्य संपादन हो रहा है या कार्य संपादन होने जा रहा था, और वास्तव में परमेश्वर ने मनुष्य को जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे थे तब बाहर कर दिया था। दोपहर की कड़ी धूप के समय अंधेरा छा गया, तब मनुष्य नहीं देख सका कि उस क्रूस पर क्या घटित हुआ। मानव को बहिष्कृत किया गया था। जब कोई मानव काम नहीं कर सका और उन आखिरी 3 घंटों में वह क्रूस वेदी बन गई थी जिस पर परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया और उसे लेकर बलिदान हो गया। मित्रों, यहाँ पर जो कार्य संपादन हुआ वो पिता और पुत्र के बीच में कलवरी के क्रूस पर हुआ। यहाँ पर मनुष्य पूर्णतः बाहर कर दिया गया था, अर्थात वह इसमें बिल्कुल भागीदार नहीं था। और वही तस्वीर या दृश्य यहाँ पर भी है। यहाँ पर इब्राहिम और इसहाक पिता और पुत्र अकेले हैं और दूसरा कोई भी इसमें शामिल नहीं है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय और उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, और इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और वे दोनों साथ साथ आगे चल दिए। यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक के ऊपर लादी। मित्रों, इस बात को याद करें कि यीशु मसीह ने भी अपना क्रूस स्वयं उठाया। आग यहां पर न्याय को दर्शाती है और चाकू प्राणदंड और बलिदान के बारे में बातें करता है। उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने कहा, हाँ बेटा। वह बोला, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, बेटा, होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध परमेश्वर स्वयं ही करेगा। अतः वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। मित्रों, इसके थोड़े समय के बाद हम इसी अध्याय के 13 पद में पाते हैं कि एक मेढ़ा झाड़ियों में अपने सींगों से फंसा हुआ है। तब इब्राहिम ने उस मेढ़े को लिया और होम बलि करके चढ़ाया। इब्राहिम यहां पर कहता है कि परमेश्वर स्वयं मेमने का प्रबंध करेंगे, परंतु वहां पर कोई भी मेमना नहीं था। यह एक मेढ़ा था और इसमें एक भिन्नता है। मेमने का प्रबंध तब तक नहीं हुआ जब तक शताब्दियों के बाद, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसे पहचान लिया और यह कहते हुए स्पष्ट किया कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। इब्राहिम ने बेटे से कहा कि परमेश्वर स्वयं ही होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेंगे। यहां पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि इब्राहिम भविष्यवाणी की बातें कर रहा है। इब्राहिम अब अपने बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार है, यद्यपि वह पूर्ण रीति से इसे नहीं समझ पाया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय उसके 9 पद में हम पाते हैं, जब वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बनाई और उस पर लकड़ियां रख दी तथा अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ियों के ऊपर रख दिया। मित्रों, ध्यान दें कि इसहाक एक छोटा लड़का नहीं है जिसे इब्राहिम बांध सके, वह एक वयस्क आदमी है। मैं विश्वास करता हूं कि यदि इसहाक चाहता तो वह इब्राहिम से छुटकारा पा सकता था, यदि यह कोई शारीरिक बल प्रयोग की बात होती तब। परंतु इसहाक यह सब कुछ आज्ञाकारिता की वजह से कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह यह कहकर क्रूस पर चढ़ गए कि मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। वह क्रूस पर बलिदान इसलिए हुआ कि वह अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। मित्रों, क्या ही अद्भुत दृश्य हमारे लिए है। इसके आगे उत्पत्ति 22 उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, तब इब्राहिम ने अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर छुरी उठा ली। इस समय यदि मैं और आप होते तो शायद कहते, इब्राहिम, क्या तुम ऐसा ही करने जा रहे हो? या ऐसे लगता है कि अब परमेश्वर आपको भी अनुमति देने जा रहे हैं। हो सकता है कि इब्राहिम ने भी ऐसा कहा होगा कि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मुझे सिखाया गया है कि ऐसा बलिदान गलत है, और मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों परमेश्वर ऐसा चाह रहे हैं, परंतु मैंने यह भी सीखा है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मित्रों, यह इब्राहिम के जीवन में वास्तविक समस्या थी। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को 4 विशेष कठिनाइयों में से निकाला है। प्रत्येक समस्या जो उसका आत्मिक जीवन में या आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए आवश्यक था, जो उसके हृदय पर सही दबाव डाल रही थी। सबसे पहले उससे कहा गया कि वह अपने रिश्तेदारों को और कस्तियों के ऊर देश को छोड़कर उसे बताए स्थान पर जाए। उसे बस अपने लोगों को छोड़ना था और यह इब्राहिम के लिए एक असली परीक्षा थी। आरंभ में उसने उसे कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी एक दिन उसने उसे पार किया। इसके बाद दूसरी परीक्षा लूत के साथ आई, जो उसका भतीजा था। इब्राहिम अपने भतीजे से प्रेम करता था। यदि वह उससे प्रेम नहीं करता तो वह उसे अपने साथ लेकर नहीं निकलता। परंतु एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ा और लूत सदोम की तराई में चला गया। इसके बाद अगली परीक्षा उसके पुत्र और हाजिरा के पुत्र इस्माइल के साथ आई। इस पर इब्राहिम परमेश्वर को पुकार उठा, ऐसा हो कि वह तेरे सामने रहने पाए। वह इस्माइल से प्रेम करता था और उससे अलग होना नहीं चाहता था। अलग होने या अलगाव से उसे घृणा थी। अब इब्राहिम एक और बड़ी परीक्षा की ओर आते हैं, और चौथी बड़ी परीक्षा जो उसके जीवन में आई वो थी, उससे कहा गया कि वह अपने पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ाए। मित्रों, इब्राहिम इन सारी बातों को बिल्कुल नहीं समझ पाया, सिर्फ एक साधारण कारण कि परमेश्वर ने उसे कहा, इसहाक से तेरा वंश चलेगा। हम इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसके 18 पद में इसे पढ़ेंगे। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया कि वह इसहाक को मृतकों में से भी जिंदा कर सकता है, परंतु जहां तक इब्राहिम का सवाल है कि वह इस बलिदान को चढ़ाने के लिए तैयार है, अर्थात बलिदान के साथ जाने के लिए तैयार है। मित्रों, आगे हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इब्राहिम को इसहाक की बलि चढ़ाने से रोकते हैं। याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है कि इब्राहिम अपने कार्यों के द्वारा धर्मी गिना गया जब उसने अपने पुत्र को बलि के लिए चढ़ाया। परंतु यहां पर एक मिनट ठहरिए, क्या इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि किया? क्या आपके बाइबल में लिखा है कि उसने अपने बेटे पर चाकू चलाया? जी नहीं, मैं भी अपने बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ता हूं। तो आइए हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 11 और 12 पद को पढ़ें। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा, इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के की ओर हाथ ना बढ़ा और ना ही उसे कोई हानि पहुंचा। मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर से डरता है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। मित्रों, अब परमेश्वर जानते हैं कि इब्राहिम परमेश्वर का भय मानता है। वह कैसे जानते हैं? उसके व्यवहार के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा और इसके पहले विश्वास के द्वारा। मित्रों, परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं और वह जानते हैं कि आप सही हैं या गलत, परंतु आपके पड़ोसी और आपके मित्र नहीं जानते हैं। वे सिर्फ आपके कार्यों के द्वारा ही आपके बारे में जान सकते हैं। यही कारण है कि याकूब कह सका कि विश्वास कर्म के बिना मरा है, अर्थात विश्वास के साथ साथ कर्म का भी होना जरूरी है। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर जिसे भी बुलाते हैं या जिस किसी को भी वे बचाते हैं या उपयोग में लाते हैं, तो उसे परीक्षा में से होकर जाना पड़ता है। परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली और परमेश्वर आज उनकी परीक्षा लेता है जो उसके अपने हैं। वह मेरी और आपकी परीक्षा लेते हैं और यह परीक्षा हमसे इसलिए ली जाती है ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम मजबूत हों, ताकि हम स्थिर रह सकें और हमें अपनी सेवा में योग्य बना सके। अब यहाँ पर इब्राहिम को एक बड़ी परीक्षा दी गई और इसके बाद परमेश्वर ने उससे कुछ भी नहीं पूछा। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 22 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, तब इब्राहिम ने आंखें उठाकर पीछे देखा कि एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र के स्थान पर उसको होम बलि करके चढ़ाया। मित्रों, हम देखते हैं कि अदन की बारे में से लेकर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक इसी छोटे पशु को बदले में चढ़ाया गया, जो परमेश्वर के मेमने के आगमन को बताता है, ताकि परमेश्वर मानव जाति या मानव बलि को चढ़ाने की अनुमति ना दे। परंतु जब उसका पुत्र इस दुनिया में आया तो वह क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 32 पद में हम पढ़ते हैं, वह जिसने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। मित्रों, वह क्रूस ही वेदी बन गया जिसमें परमेश्वर का मेमना जो जगत के सारे पापों को अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया, और इसे देखना हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति 22 अध्याय के 14 पद में लिखा है, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, अर्थात यहोवा उपाय करेगा। इसलिए आज तक यह कहा जाता है कि यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। इब्राहिम इस स्थान का नाम रखते हैं और बहुत से लोगों का यह विश्वास है कि इसी स्थान पर राजा सुलेमान ने मंदिर बनाया था। गुलगथा, जो खोपड़ी नामक स्थान था, वह भी उसी पर्वत पर मंदिर के बगल में था। वहीं इब्राहिम अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए लाया और यह वही स्थान था जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। यह एक महिमामय और अद्भुत बात है जिसे हम यहाँ देखते हैं। इस स्थान का नाम इब्राहिम ने यहोवा यीरे रखा, जिसका अर्थ है यहोवा उपाय करेगा। यहाँ पर वह अपनी तरफ से पहल करते हैं। अब हम उत्पत्ति 22 के 15 और 16 पद को पढ़ेंगे। इसके बाद यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दोबारा पुकार के कहा, यहोवा यह कहता है, क्योंकि तूने यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूं कि मित्रों यहाँ पर एक मिनट रुकिए, मेरे पास पूछने के लिए एक प्रश्न है, क्या इब्राहिम ने ऐसा किया? जी नहीं, उसने अपने पुत्र को बलिदान नहीं किया, परंतु परमेश्वर उससे कहते हैं क्योंकि तूने ऐसा किया है। हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह बहुत आगे निकल गया ताकि मैं और आप जाने कि परमेश्वर हर बात पहले से जानते हैं, और वे चाहते हैं कि संसार की बाकी सृष्टि जाने कि इब्राहिम इसहाक के बलिदान के लिए तैयार है। इसी को परमेश्वर ने कहा कि तूने ऐसा किया है। वह विश्वास के द्वारा धर्मी गिना गया, परंतु कार्यों के द्वारा भी वह मनुष्यों में धर्मी ठहरा। उसने यह प्रदर्शन किया कि उसका विश्वास है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस पर ध्यान दे कि परमेश्वर कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसने भी अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इससे वह स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच के खाली स्थान में एक मनुष्य को खड़ा होना है। वह व्यक्ति इस योग्य होना चाहिए कि वह उद्धार करता हो, जब कोई बचना या उद्धार पाना चाहे तब। मित्रों इस अध्याय में हमें एक बड़ा पाठ दिया गया है। इब्राहिम ने कहा कि परमेश्वर स्वयं मेमना का प्रबंध करेगा, और उन्होंने एक मेढ़ा फंसा पाया और उसको बलि किया, परंतु परमेश्वर ने मेमने का प्रबंध 2000 वर्ष बाद यीशु मसीह में किया। परमेश्वर ने इब्राहिम के हाथ को रोक दिया और इसहाक पर छुरी नहीं चलाने दी, क्योंकि यह गलत होता। उसने इब्राहिम के पुत्र को बचा लिया, परंतु उसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, परंतु उसने हम सबों के पापों के लिए उसे मुफ्त में हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया। मित्रों हमारे अध्ययन का समय यहीं पर समाप्त होता है, और अगले अध्ययन में हम पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु आप सबों की सहायता करें। कृपया आप मुझे पत्र अवश्य लिखकर बताएं कि आपको यह अध्ययन कैसा लगा।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।